चरणों में अपना तन मन प्राण सर्वस्व सौंप देने के बाद इन विकारों की क्या हिम्मत जो हृदय में घुस करके ये ऊटपटांग काम कर सके। ऐसा नहीं हो सकता। ये चोर डकैत तब तक ही, ये कल आप सुन चुके हैं, आपको स्मरण में होगा, ब्रह्मा जी ने कहा तावद भयम द्रविण गेह सुरहिण्य मित्तम, तब तक ही भय होता तावन मोहंग्री निगड़ा यावत कृष्णन तेजन, जब तक आपका नहीं बन जाता तब तक ये काम क्रोधादिक विकार पीड़ा पहुंचाते हैं, और आपके बन जाने के बाद तो ये दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। फिर कथनचित आ भी जाए तो भगवान के संकल्प से आते हैं। आप लोग कहेंगे भगवान के संकल्प से क्यों आए थे? भगवान के संकल्प से माइक काम नहीं, माइक क्रोध नहीं, भगवान के संकल्प से जो काम क्रोध आता वो भी लीला में सहयोग कराने के लिए आता है। जैसे सनकादिकों के पास क्रोध आया, क्यों आया? वो माइक क्रोध था, माइक क्रोध नहीं था, वह क्रोध भगवान के अवतार की भूमिका को संपादित करने वाला क्रोध था। तो भक्त के चित्त में लौकिक माइक विकारों का तो प्रवेश ही संभव नहीं। कथनचित कोई उसके चरित्र में ऐसी लीला दिखाई पड़ जाए तो वो काम क्रोध नहीं होता, वो भगवान की लीला शक्ति उस समय उसके भीतर संचरित होकर के क्रिया करती है। कितने संत भीतर से अतिशय सरल कोमल और माधुरी के भावों में डूबे रहते हैं और ऊपर से ऐसे कठोर होते हैं, एक क्षण में दुर्वासा का रूप दिखाई देने लग जाए, आंख लाल हो जाए, होठ फड़कने लग जाए। हम लोगों को तो यही अनुभव हुआ कि अरे भाई महात्मा तो हमने सुना था बड़े सिद्ध हैं, पर ये तो बड़े क्रोधी हैं। लेकिन वस्तुतः वे भीतर से वैसे नहीं होते। हमने तो अनुभव किया है, भीतर से वे वैसे नहीं होते। हमने एक सिद्ध संत से पूछा कि महाराज जी आपका हृदय तो बहुत कोमल है, ऊपर से आप कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं और दूसरे ही क्षण आपने क्रोध नहीं दिखाई पड़ता, आप हंसने भी लग जाते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो और ये महात्माओं को तो ऐसा होना चाहिए, ये लक्षण क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो महाराज हंस करके बोले कि देखो ऐसा है कि माली जो होता है वो अपने फूल के बगीचे को सुरक्षित करने के लिए कांटों की बाड़ लगाता है, कांटों की बाड़ इसलिए लगाता है कि कांटे नहीं होंगे तो फूल ही नहीं होने पाएंगे, लोग कली कली उतार के ले जाएंगे, फूल नहीं खिल पाएंगे। बस यही बात है, संतों का हृदय वृंदावन होता है और उसमें बड़े बड़े दिव्य दिव्य बेला चमेली गुलाब के फूल खिलते हैं, भाव में पुष्प खिलते हैं, उनके मकरंद में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। अब कहीं बाहरी व्यक्ति भीतर तक सेंध न मार ले, इसलिए वे ऐसा व्यवहार बाहर से बना के रखते हैं कि पता ही नहीं चले कि महात्मा कैसे हैं, उच्च कोटि के महात्मा। हाँ, माली की कृपा हो जाए और वो उसमें प्रवेश द्वार बता दे कि चलो भाई तुम भी घुसाओ, चले आओ हमारे पास, तो भले ही संभव है, अन्यथा उसमें प्रवेश पाना संभव नहीं है। ऐसे ही ये संत माली हैं, उनका हृदय वृंदावन है और भाव रूपी प्रेम रूपी पुष्प उनके हृदय में खिले हुए हैं, जिनके मकरंद का आघ्राण श्री मुरली मनोहर नवनीत प्रिय श्याम सुंदर राधिका रमण करते हैं और उन भाव रूपी वाटिका में प्रवेश इन संत रूपी मालियों की कृपा से ही प्राप्त होता है, सबको उसमें प्रवेश नहीं मिलता। वृंदावन में एक संत थे श्री राम शरणदास जी महाराज, हमने उनका दर्शन नहीं किया लेकिन प्राचीन संतों से उनका बहुत नाम सुना, सितारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, सितारी बाबा सितार बजाते थे और मथुरा का शरीर था उनका, चतुर्वेदी ब्राह्मण थे, रामानंदी साधु थे, बाद में वृंदावन आ गए, निधिवन में रहते थे वो। यद्यपि ऐसी मान्यता है कि निधिवन में रात को कोई नहीं रहता लेकिन बाबा को रोक नहीं थी, बाबा जब चाहे तब सेवा कुंज में पड़े रहे, जब चाहे तब निधिवन में पड़े रहे, उनको कोई रोक नहीं। श्री राधा रमन जी में सायंकाल को कभी कभी सितार बजाने आते थे। राधा रमन जी से विशेष प्रीति थी उनकी, और ऐसे ही घूमते रहते, कोई दे जाओ खाने के लिए, कौन आया किसने दिया नहीं, पाले थे प्रेम से। सितार को ऐसे कांख में लिए रहते, एक गुदड़ी रखते, और उस समय 60-70 साल पुरानी बात होगी, 50-60 साल पुरानी बात होगी, वो जंगल खूब था वृंदावन में, कहीं भी कुंज में बैठ करके सितार बजाना और अपने भाव में डूबे रहना। तो बहुत गहरे तक माधुर्य रस में उनका प्रवेश था। वृंदावन के बड़े बड़े गोस्वामी पाद उनकी चरण रज मस्तक पर उठाते थे, और स्वभाव इतना भयंकर था कि किसी व्यक्ति को एक मिनट सामने खड़ा नहीं होने देते। सितार बजाते कोई आ गया तो पत्थर रखते थे 10-5 बटोर करके, ककैया ईंट होती ना, और ऐसे मारते कि ये नहीं देखते कि मत्थे में लगेगा कि पीठ में लगेगा, कहां लगेगा, उठा उठा के पत्थर मारते। लोग नहीं जाते उनके पास, मस्त अकेले बैठे रहते, झूमते रहते आनंद में। और एक बार यमुना जी के किनारे बैठे थे, जेठ का महीना था, बड़ी गर्मी थी, तो सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठते थे। तो कहा स्वामी जी ने मेघमलार गाया तो बादल उमड़ उमड़ के आ गए, अब कोई संगीत का ऐसा विद्वान नहीं जो मेघमलार गा के पानी बरसा सके। हंस करके बोले कि यमुना जी मेघमलार सुने, बस सितार के तारों को छोड़ा और मेघमलार जब उन्होंने आलापा, वो काली काली बदली जाने कहां से उमड़ घुमड़ के आई, वो पानी बरसने लगे। ऐसे महात्मा थे, संपूर्ण राग रागनी सिद्ध थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो पूरे ब्रज में उनका भंडारा हुआ, कोई गांव कोई मंदिर ऐसा नहीं बचा जहां उनके नाम से भंडारा न हुआ। पैसा छूते नहीं थे, एक जगह रहते नहीं थे, कहीं भी पड़े रहते, बड़े अच्छे महात्मा। तो ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं, सिद्ध संत हैं, इनका लीला में प्रवेश है, भाव राज्य में प्रवेश है, इस बात को वृंदावन के बड़े बड़े सिद्ध जानते थे। लेकिन इसके बाद भी उनका स्वभाव ऐसा था कि अच्छे से अच्छी कीर्ति सुनकर आने वाला उनके निकट नहीं पहुंच पाता था, और वो श्रद्धा नहीं कर पाता था। उनकी लीला देख के यही कहता था कि अरे कैसे महात्मा ऐसे, ये महात्मा तो बड़ाई किए ही करते हैं, इतना गुस्सा करने वाला कहीं महात्मा हो सकता है? गुस्सा उस्सा उनके भीतर कुछ नहीं था। और जब शरीर छोड़ने का समय आया तो चित्रकूट गए शरीर छोड़ने, जीवन भर वृंदावन रहे, और जब शरीर छोड़ने का समय आया तो खाटो वाले महाराज जी को उन्होंने सितार सिखाया था, नाम लेके बोले कि हमको चित्रकूट भेज दो। महाराज बोले महाराज तो वृद्धावस्था आ गई, चित्रकूट जाके क्या करोगे? बोले राधा माधव का सुख विलास वृंदावन है और श्री सीताराम जी का सुख विलास चित्रकूट है, तो राधा माधव के कुंज में तो खूब सेवा करी है, अब श्री सीताराम जी के कुंज की सेवा करने का मन है, हमको वहां भेज दो। लकड़ी झोंकने वाली ट्रेन चलती थी, महाराज ने उनको बिठा दिया, चित्रकूट पहुंचे, और चित्रकूट पहुंच करके वैशाख शुक्ल पक्ष की 10वीं को चित्रकूट पहुंचे, नौमी को अक्षय जानकी नौमी को या 10वीं को पहुंचे, और वहां 2 दिन रहे। एकादशी को आपने कभी तिलक उलक नहीं लगाते थे, ऐसी परमहंस महात्मा थे, उस दिन मंदाकिनी में स्नान किया, सुंदर द्वादश तिलक धारण किए, तुलसी की माला पहनी और तिलक धारण करके एक पत्थर पर बैठ गए, चारों ओर से पानी बह रहा है, और वहां बैठ करके खूब भगवान नाम संकीर्तन किया, सितार बजाया, और सितार को रख करके ऐसे जल का आचमन कर रहे थे, उसी समय ठाकुर जी की लीला में तीसरे दिन भगवान लीला प्रवेश हो गया। परमहंस बाबा श्री रामशरण दास जी महाराज सिद्ध संत थे, प्रिया जी की प्रत्यक्ष लीलाएं उनके सामने होती थी, ऐसी हमने सिद्ध संतों से सुना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप कैसे मानेंगे, संत के बाह्य स्वरूप को देख करके भी नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसे कैसे। एक बहुत सिद्ध कोटि के संत महाराज जी के निकट रहते थे, साक्षात भगवत दर्शन कई बार उन्हें प्राप्त हुआ था, श्री हरिराम बाबा, और प्रेम के सारे लक्षण उनके शरीर में दिखाई पड़ते थे, लेकिन आखिरी अवस्था कुछ विक्षिप्त जैसी थी। तो एक दिन मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज आप कहते हैं कि ये महात्मा बड़े प्रेमी संत हैं, चैतन्य महाप्रभु के भाव इनमें दिखाई पड़ते थे, इस समय तो इनकी लीला समझ में नहीं आती। सवेरे प्रणाम करने जाओ तो कहते जा बच्चा जल्दी मरेगा, और प्रणाम करके कहते बाबा हमको आशीर्वाद दीजिए, कहा तेरा नाश हो जाए। तो महाराज बताओ, अच्छी बात कभी मुंह से बोलते ही नहीं, ऐसी बात बोलते हैं। महाराज बोले तुम नाश शब्द का अर्थ नहीं समझते हो, नाश माने मोक्ष हो जाए, नाश माने मोक्ष होता है। विलक्षण महात्मा थे और अच्छी ऊंची स्थिति भाव की उनको प्राप्त थी। तो महाराज से पूछा कि ये ऐसा स्वभाव और आप कहते इतने प्रेमी महात्मा, ये विक्षिप्त अवस्था को देख के तो लगता है कि इनमें प्रेम नहीं, ये इस तरह की लीलाएं करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि वृक्ष में ऋतु पर फल आते हैं, और ऋतु जब नहीं रहती तो उस पर फल नहीं रहते। तो फल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आम के पेड़ में, तो क्या उस आम को फलहीन कहकर उसकी निंदा करोगे क्या? वृक्ष में फल ऋतु पर आए और ऋतु चली गई, अब फल नहीं है, तो क्या वृक्ष को फलहीन कह करके उसकी निंदा की जा सकती है? नहीं। ऐसे ही यह प्रेम रूपी फल संत रूपी वृक्ष में समय समय पर प्रकट होता है, और उसका स्वाद श्री ठाकुर जी लेते हैं। और जब ठाकुर जी चाहते हैं कि संत रहें, तो कभी कभी अपने प्रारब्ध भोग के लिए इस तरह की लीला भी होती है। इससे संत के स्वरूप में कोई क्षति होती नहीं। जिस दिन उनको शरीर छोड़ना था, उस दिन हमको सौभाग्य मिला स्नान कराने का। स्नान कराने लगे तो स्नान कराते समय गाली जरूर देते थे, आशीर्वाद तो देते नहीं, गाली ही देते, तेरा बुरा हो जाए, तू नरक चला जाए, ऐसी बात बोलते। उस दिन गाली नहीं दे रहे थे कि बाबा आज तो बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है? तो हंस करके कहते बच्चा आप किससे क्या बोलना, आप गाली वाली नहीं देनी, आज तो हम ठाकुर जी के पास जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे आज। कि बाबा आप वैकुंठ जाओगे? हाँ हाँ वैकुंठ जाएंगे आज, और आज तो हम वैकुंठ जाएंगे। तो हंसते भी जा रहे हैं और कहते भी जा रहे हैं कि आज हम वैकुंठ जाएंगे। तो हमने प्रणाम करके कहा कि बाबा वैसे तो दिख नहीं रहा कि आप मर जाओगे, लेकिन लोगों ने जब दर्शन किया तो देखकर नहीं लग रहा था कि शरीर छूट गया, विश्वास नहीं हो रहा था शरीर छूट गया, ऐसी मुस्कान और ऐसा मस्तक पर तेज, बैठे बैठे शरीर छूट गया। 104 वर्ष की आयु थी। बड़े प्यारे प्यारे पद उनके, पद को सुनकर के भी नहीं लगता कि ये महात्मा के, पद को सुनकर के तो लगता बहुत ऊंची स्थिति के पद। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी अपकीर्ति भी तेरी होगी, हम नंद सुवन गोपाल के हैं यह बात जगत को बता चुके, तुम मानो या न हमें मानो हम तुमको अपना बना चुके। एक से एक मार्मिक पद है उनके, एक से एक मार्मिक। तुम्हें घनश्याम यदि पाते गले का हार कर लेते, बिठा कर मन के मंदिर में हवस भर प्यार कर लेते। एक से एक विलक्षण पद। महात्मा की स्थिति बड़ी ऊंची और व्यवहार देखो तो लगे विक्षिप्त जैसा। तो ये सब श्री ठाकुर जी की लीला है। कहने का तात्पर्य यह है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस भाव की प्रतिष्ठा होते ही अविद्या से मुक्त, माया से मुक्त, माया जनित विकारों से मुक्त, सबसे मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये संत के प्रति भाव की सुरक्षा के लिए बात कही गई। इसके बाद भी किसी उच्च कोटि के संत में, जिनके संबंध में प्रमाणिक प्रमाणभूत संत जिनके संबंध में कुछ कहते हो, उनके जीवन में कुछ ऐसी लीलाएं अटपटी दिखाई पड़ जाएं, तो समझना चाहिए ये संत के चित्त इससे विकार युक्त है यह नहीं है। ये तो भगवान की लीला है। भगवान संत के शरीर के द्वारा कौन सी लीला कर रहे हैं, खीज की रीझ की विनोद की प्रेम की, ये तो ठाकुर जी ही समझें। इस प्रकार के भाव को रख करके संतों में पूर्ण भगवत भाव रखना चाहिए। हे माता जी, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनम् प्रकृतिं चहतौ जसं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वैराग्य और भक्ति से युक्त जब साधक हो जाता है, भक्त हो जाता है, तो फिर वह प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है। और जब तक प्रकृति के प्रति उदासीन नहीं होता, तब तक प्रकृति अपने बंधन में बांधने वाली होती है। और जब प्रकृति के प्रति उदासीन हो गया, तो प्रकृति तो जड़ है और हम चेतन हैं, जड़ चेतन को कैसे बांध सकता है। बंधन हुआ है उसके प्रति स्पृहा करने से, आसक्ति करने से, उसके ओर आसक्ति पूर्वक देखने से बंधन हुआ है। बंधो कीर मरकट की नाई, किसी ने बांधा नहीं है, कीर और मरकट की तरह खुद ही अपने आप बंध गया। प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है, और जब प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है तो प्रकृति ओझहीन हो जाती है। जब तक उदासीन नहीं है, आकर्षण है, तब तक बंधन में है, वो उदासीन होती ही फिर प्रकृति ओझहीन हो जाती। श्री ठाकुर हरिदास, जिनको यवन हरिदास भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षद, जिनके मृत शरीर को गोद में लेकर के महाप्रभु जी ने घंटों भावपूर्ण नृत्य किया और अपने हाथ से जिनको सिद्ध बकुल में समाधिस्थ किया, महाप्रभु जी ने खुद भंडारा किया और रुदन करते हुए महाप्रभु जी ने कहा कि हरिदास, आज तुम जैसे नाम प्रेमी के मृत शरीर का भी आलिंगन करके मैं कृतार्थ हो गया, मैं पवित्र हो गया, ऐसा नाम प्रेमी अब आगे नहीं मिलेगा। ये ठाकुर हरिदास, उनको पथ भ्रष्ट करने की इच्छा से, उनकी बदनामी की इच्छा से एक रूपवती वेश्या को उनके निकट भेज दिया गया। अब वो प्रकृति है, प्रकृति ये तो प्रकृति का स्थूलांश जो है उससे नारी देह का निर्माण हुआ है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांचों विषय उसमें बहुत अधिक मात्रा में विराजमान होते हैं। लेकिन आप तो कीर्तन करते 22 घंटे तक भजन करते, अब वो कहती है कि हम कुछ बात करना चाहते हैं, तो आप इशारा करते कि हमारा भजन पूरा हो जाए तो बात करूंगा। 2 दिन हो गए, 3rd दिन कीर्तन सुनते सुनते उसका चित्त शुद्ध हो गया, भयंकर नरक का दृश्य दिखने लग गया, चरणों में गिर करके रोने लगे, बोले महाराज क्षमा करो, आज तो निश्चय कर लिया कि जब भजन पूरा होगा तभी उठूंगी। महात्मा के चरणों में गिर करके रोने लगी, आपको तनिक भी यह नहीं आया कि मैंने जीत लिया विकारों को, आपने भगवान नाम संकीर्तन कर, श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, तुम इतना दुख क्यों कर रही हो, वे पतित पावन है, उनका नाम पतित पावन है, वे तुम्हें अपनावेंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, ले ये तुलसी की माला और इसी झोपड़ी में निवास करके भगवान का भजन करो। आज्ञा मिल गई। उस बेस्या ने सारी संपत्ति को लुटा दिया और उस झोपड़ी में रहकर भजन करने लग गई और आप उस झोपड़ी को त्याग कर उसी रात को अन्यत्र चले गए। वह हरिदासी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो जो बेस्या थी बाद में हरिदासी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बहुत ऊंची स्थिति उसे प्राप्त हुई। जब तक ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्राप्त नहीं भई है तब तक प्रकृति के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हो सकता। और जब संतों के संपर्क में जाने पर ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, तो प्रकृति के प्रति उदासीनता आ जाती है। और जब वह प्रकृति के प्रति उदासीन होता है तो प्रकृति में रहकर प्रकृति के बंधन से मुक्त होता है। श्री रंगम में रामानंद स्वामी जी रंगनाथ भगवान की यात्रा में थे, ब्रह्मोत्सव की यात्रा में थे, और उन्होंने देखा कि एक श्री रंगम का एक व्यक्ति स्त्री के ऊपर छत्ता लगा करके पीछे पैरों से चल रहा है। आपने पूछा कि ये महाशय कौन है? बोले इनका नाम है धनुर्दास, ये मल्ल हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं, इनकी पत्नी का नाम है मालिनी देवी, इनने इनकी बड़ी आसक्ति है। अच्छा, आपने मंदिर पहुंचने के बाद, मठ पर पहुंचने के बाद शिष्यों से कहा कि जाओ उनको बुला के लाओ धनुर्दास को। धनुर्दास ने सुना तो वो भयभीत हो गया, लोगों ने शिकायत कर दी होगी। धनुर्दास वहां पहुंचा तो आचार्य चरण ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा धनुर्दास, भगवान के सामने यात्रा निकल रही हो तो जूता पहनकर नहीं चलना चाहिए, छाता लगाकर नहीं चलना चाहिए, और तुम अपनी पत्नी पर छत्ता लगा के चल रहे थे, उल्टे चल रहे थे, तुम्हें तनिक लज्जा भी नहीं आई, इसका क्या कारण है? सच्ची सच्ची बात बताना। वह बोला कि महाराज, अपनी पत्नी से सुंदर रूप हमें संसार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता और उसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसलिए जब घूमने निकलता हूँ तो छत्ता लगा लेता हूँ कि कहीं उसका रूप सूर्य की किरणों से कुमला न जाए। देखो ये दोष है संसार के रूप में आसक्ति होना, लेकिन आचार्य चरण गदगद हो गए, इतनी आसक्ति रूप में है? बोले इससे अनंत गुणित सुंदर रूप देखने को मिल जाए तो फिर क्या इधर से तुम्हारी आसक्ति छूट जाएगी? बिल्कुल छूट जाएगी। अब तो श्री रंगनाथ भगवान के निकट गए, हे नाथ, इस जीव पर कृपा करो, अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराओ। ऐसी प्रार्थना करके जैसे ही धनुर्दास को बुलाया है और प्रार्थना की है, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मा पराधीनम। ये अनंत जन्म का अपराधी है, इसकी रक्षा करो। जैसे ही आचार्य ने प्रार्थना की, भगवान ने चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट कर दिया। उस रूप का दर्शन करते ही तो मूर्छित होके गिर गया, विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया और बोला कि बस अब तो बहुत लज्जा हो रही है, मलबूत्र के भांड पर इतने दिन तक आसक्ति, सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करके सर्वस्व ने सावर कर दिया। फिर धनुर्दास बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए। तो भगवान नाम रूप लीला के प्रति जब आकर्षण हो जाएगा तो संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति, चाहे वह रूप हो या रस हो या गंध हो या शब्द हो या स्पर्श हो, उन सब के प्रति अनासक्ति हो जाएगी। और प्रकृति के प्रति अनासक्ति भगवान में आसक्ति, और भगवान में आसक्ति प्रकृति के प्रति अनासक्ति, ये दोनों एक ही बातें हैं। तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति से जब चित्त शुद्ध होता है तो उसका संपूर्ण आकर्षण भगवान में हो जाता है, और जब संपूर्ण आकर्षण भगवान में हो जाता है तो प्रकृति के प्रति उदासीन हो जाता है, और उदासीन प्रकृति ओझहीन हो जाती है। वह उस भगवान के प्रेमी भक्त का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। हे माताजी, मुझे अखिलात्मा विश्वात्मा परमात्मा में भक्ति करना, इससे श्रेष्ठ कोई कल्याणकारी मार्ग योगियों के लिए भी नहीं है। योगिनाम ब्रह्म सिद्ध है, योगियों के लिए भी ब्रह्म सिद्धि का इससे उत्तम कल्याणकारी कोई मार्ग नहीं है कि मुझ परमात्मा में सर्वतो भावेन प्रीति करें, भक्ति करें। बड़े से बड़े योगी यदि मेरी भक्ति से विमुख हैं, तो उनके योग की साधनाओं के बल पर उन्हें तमाम प्रकार की सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी और उन सिद्धियों के कारण लोक में बड़ी प्रतिष्ठा और प्रभाव उनका बढ़ जाएगा, हजारों लाखों लोग मानने वाले उनको हो जाएंगे। लेकिन उन योग की सिद्धियों से, उस तपस्या से भगवान मिल जाएंगे, ये संभव नहीं। भगवान कहते मेरी प्राप्ति जब होगी वह प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही मेरी प्राप्ति होगी। हे माता जी, जीवात्मा का सबसे मजबूत, कभी न पुराना होने वाला बंधन आसक्ति है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पावृतम्। संसार में दृढ़ आसक्ति यही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी भी जीर्ण नहीं होता, पुराना नहीं होता, इसलिए आसक्ति शून्य हो जाए। माता जी ने कहा कि भगवान आसक्ति शून्य होना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि आसक्ति करने का अभ्यास जीव को कई जन्मों का है, अनंत जन्मों से आसक्ति करने का अभ्यास पड़ा हुआ है। जहां जाता है वहीं आसक्त हो जाता है, उसका स्वभाव ऐसा। और आसक्ति का सर्वथा त्याग करे ये बहुत कठिन है। भगवान बोले कोई बात नहीं, ज्ञान मार्ग में आसक्ति का त्याग है, भक्ति मार्ग में आसक्ति का त्याग नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में आसक्ति तो आदरणीय है, निंदनीय नहीं है। बस इतना है कि जो आसक्ति संसार में बनी भई है, संसार के तुच्छ विषयों के प्रति बनी भई है, उस आसक्ति को साधु सुकृता, उस आसक्ति को संतों से जोड़ दो। आसक्ति करना करने में तो कोई सीखना हमें पड़ेगा नहीं, क्योंकि आसक्ति करना तो हम जानते ही हैं, लाखों जन्म से आसक्त होते चले आ रहे हैं। आसक्ति की कला में हम अत्यंत कुशल हैं, प्रवीण हैं, आसक्ति करना हम जानते हैं। अब हमारा जो विनाश हो रहा है, हमारी जो दुर्गति हो रही है, वह संसार में आसक्ति करने के कारण हो रही है। वह आसक्ति जब संतों में हो जाएगी तो मोक्ष द्वार मपावृतम्। जब संतों में वह आसक्ति हो जाएगी तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। यहां एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि भगवान ने अपने में आसक्ति करने की बात क्यों नहीं कही। यह कहना चाहिए था कि हम में आसक्ति करें, अपना नाम नहीं लिया, अपने में आसक्ति की बात न कहकर संतों में आसक्ति करनी चाहिए, यह बात कही। इसका कारण क्या है? आखिर भक्त संत भी तो जीव कोटि का ही है, ईश्वर कोटि तो नहीं है। ईश्वर कोटि तो केवल एक ईश्वर की है, वो जीव कोटि का ही है। ब्रह्मा जी तक सब जीव कोटि के हैं। फिर संत में आसक्ति की बात क्यों कही, भगवान में आसक्ति करने की बात क्यों नहीं कही? इसका मूल कारण यही है कि भगवान में आसक्ति कर पाना बहुत कठिन है और संत में आसक्ति कर पाना कठिन नहीं है, वो सरल है, सहज है। उसका कारण यह है कि यद्यपि भगवान सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं, सर्वमय हैं, सर्वनियामक नियंता सर्वेश्वर हैं, लेकिन इसके बाद भी भगवान में एक दोष दिखाई पड़ता है, वो है परोक्षता का दोष। यद्यपि सबके बाहर भीतर हैं, लेकिन उनका अनुभव कहाँ हो रहा है? अनुभव हो रहा है? सबके बाहर भीतर विराजमान है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन संत में वह दोष नहीं है। संत का आपने दर्शन किया, संत की आपने वाणी सुनी, संत ने आपके मस्तक पर वरदहस्त पधराया, संत ने आपकी जिज्ञासा को सुना, संत ने जिज्ञासा का समाधान किया, संत आपको आपकी सुख दुख की बात भी सुन लेते हैं, आपको भगवान की ओर प्रेरित भी करते हैं, तो उन संतों में आसक्ति करना सरल है। और जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, केवल जिनके संबंध में हमने सुन रखा है, उनमें आसक्ति होना थोड़ा कठिन है। संत में आसक्ति होना सरल है, और संत में की गई आसक्ति भगवान की ही आसक्ति होती है, क्योंकि संत और भगवंत में अंतर नहीं है। संत में की गई आसक्ति भगवान की ही आसक्ति है, और भगवदाशक्ति को ही प्रेम कहते हैं। भगवदाशक्ति ही प्रेम है, भगवदाशक्ति ही भक्ति है। जब संत में जीव आसक्ति करता है, तो फिर उसे ठाकुर जी में आसक्ति करनी नहीं पड़ती, उसे पता भी नहीं चलता, और श्री ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला में उसकी आसक्ति हो जाती है, उसे भगवत प्रेम सहज प्राप्त हो जाता है। इसी भाव को गोस्वामी जी ने कहा, राम भक्ति अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत कोई अनुकूला। संत अनुकूल हो जाएं तो भगवान की अनुपम सुख अनुकूल, रुपया कपड़ा भोजन केवल दे दिया और संत अनुकूल हो जाएं, ये संभव नहीं है। जो वस्तुतः महात्मा हैं, वीतराग संत हैं, उन्हें इन पदार्थों की, इन वस्तुओं की क्या अपेक्षा। संत की अनुकूलता प्राप्त होगी जब संत के उपदेश के अनुरूप हमारा जीवन होगा। वे जैसा कहते हैं वैसा करने का प्रयत्न जब हम करने लग जाएंगे, तो वह संत की अनुकूलता हो जाएगी। श्री पंडित जी महाराज ने कुड़िया बाबा की बहुत अधिक कोई सेवा नहीं की कि वहां निकट कर रहे हो या सेवा की हो, लेकिन वे गुरुजनों के आदेश को मानकर परिपूर्ण निष्ठा से भजन में लग गए, बस कुड़िया बाबा की कृपा हो गई। और वे इतने अनुकूल हो गए, वे इतने अनुकूल हो गए बाबा, कि पंडित जी की सतत याद करते रहते थोड़िया बाबा। अपने एकांतिक क्षणों में वे किसी की याद नहीं करते और पंडित जी का ध्यान रखते। ये है संत की अनुकूलता हो जाना। केवल यही है संत की अनुकूलता हो जाना। उनके उपदेश के अनुकूल यदि हमारा व्यवहार बन गया, तो संत अनुकूल हो जाएंगे, फिर भगवान की भक्ति सहज मिल जाएगी। संतों में जब आसक्ति करता है, तो वे संत क्या करते हैं, हमने की संत में आसक्ति, और संत की संपूर्ण आसक्ति श्री प्रिया प्रीतम में है, ठाकुर जी में है, तो वे संत क्या करते हैं, तो उस जिज्ञासु को निकट जब वो आने लग जाता है, तो उसको धीरे धीरे उसको चरणामृत देंगे, प्रसाद ठाकुर जी का देंगे, राधे राधे बोल देंगे, बस ये कृपा का सूत्रपात प्रारंभ हो गया। फिर कहेंगे ऐसा है कि तुम रोज तो आते ही हो, कल हमारे यहाँ राधाष्टमी है, तो कल जरूर आना, कुछ बाहर से संत भी आ रहे हैं, कीर्तन होगा, भंडारा होगा, तो उसे कीर्तन वगैरह में ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन भंडारे का नाम सुना तो मन में आया कि हाँ कुछ प्रसाद मिलेगा, बढ़िया बढ़िया चीज मिलेगी, चलो खाने की इच्छा से भी कहीं पहुंच गया, वहाँ कीर्तन हो रहा होगा, वहाँ कथा हो रही होगी, वहाँ लीला हो रही होगी, उनका दर्शन करेगा और फिर संतों का प्रसाद लेगा, संतों का संग करेगा, तो यही करते करते उसे पता भी नहीं चलेगा। और जितनी आसक्ति संत की श्री ठाकुर जी में है, वैसी ही आसक्ति उस प्रेमी की हो जाएगी जो संत में आसक्ति कर रहा है। इसको कहते श्रृंखला संबंध। संत की आसक्ति ठाकुर जी में जुड़ी और साधक की आसक्ति संत में जुड़ी, तो श्रृंखला संबंध से जिसकी आसक्ति संत में जुड़ी है, उसकी आसक्ति भी भगवान में हो गई कि नहीं। इंजन से डिब्बा जुड़ा हुआ है, अब उस डिब्बे में भरे कोयला भराओ। यदि इंजन से जुड़ा है तो जहां इंजन जाएगा वहां डिब्बा पहुंच जाएगा, और डिब्बे में भले ही सोना भरा हो और वह इंजन से संपर्क उसका कट जाए, तो जहाँ है वहीं धरा रहेगा, एक पग भी नहीं चल सकेगा। ये संत हैं इंजन और जीव हैं डिब्बे। बस अपने को संत से जोड़ दो, संत चरण से जोड़ दो, बस वो जहाँ जाएंगे उनसे जुड़े रहो, उनके पीछे पीछे चलते रहो, वे जहाँ पहुँचेंगे वहाँ जरूर पहुँचना है। और संत जो हैं वे तो ठाकुर जी के चरण कमल छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। संत में संपूर्ण आसक्ति हो गए तो फिर मरने से भय नहीं। अब यद्यपि संत नहीं है, संत शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन अब तो और आनंद की बात हो गई। क्यों? हम जिन संत में आसक्ति करते थे वे संत श्री प्रिया जी की सेवा में हैं, अब तो हमें और सुविधा हो गई, क्योंकि हमारी पुरजोर सिफारिश करने वाले एक महात्मा वहाँ पहुँच गए। अब तो हमको वहाँ पहुँचा ही समझो, जैसे किसी बड़े अधिकारी के यहाँ कहीं बड़ी जगह पर कोई एक अपना घनिष्ठ व्यक्ति पहुँच जाए तो फिर लोग कहते, अरे तुम्हारे लिए कठिनाई होगी प्रधानमंत्री के यहाँ जाने में, हमारा तो अपना भाई वहाँ रहता है, वो उनका क्या कहते पीए है, उनके वही सारी यात्राएं बनाता, हम जब चाहेंगे तब मिल सकते हैं, भरोसा उसको हो जाता कि नहीं। ऐसे ही हमारे आचार्य, हमारे संत जब शरीर छोड़कर श्री ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं तो भी साधकों को बल मिलता है। हमें अब काहे का डर, हमारे बाबा तो बैठे हैं किशोरी जी की सेवा में, बस उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। और जब ये शरीर का प्रारब्ध पूरा होगा तो जल्दी से हमें भी प्रिया जी की सेवा में पहुंचना है। संत में आसक्ति होते ही मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसका बड़ा सुंदर चरित्र भक्तमाल में प्राप्त होता है। भक्तन हित सुत विशदियो भूप नारी ग्रह राख पति। ने दो भक्ताओं के चरित्रों का वर्णन किया है, भक्तन हित सुत विशदियो भूप नारी ग्रह राख पति। ऐसी आसक्ति हो जाए तो फिर जगते रहो या सोते रहो, कुछ करो या न करो, ऐसी आसक्ति हो जाए तो परम कल्याण निश्चित है। संतों की जमात तीर्थ यात्रा पर थी, भ्रमण में थी। दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश में एक राजा के राज्य में होकर के निकली। राजा बड़ा भक्त था, राजा ने संतों की जमात को रोक लिया। अयोध्या वृंदावन के त्रिकूट के संत थे, राजा ने रोक लिया। संतों के साथ ठाकुर जी थे, जुगल किशोर थे, लाडली लाल थे, उनकी सेवा पूजा थी। जमातों में ठाकुर जी चलते हैं, अब तो रोज कथा कीर्तन सत्संग होने लग गया। 10-5 दिन संत रुके और बोले, भाई हम तो तीर्थ यात्रा में, हम रुक नहीं सकते, हम चलेंगे। राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज अभी तो महीना चल रहा है अगहन का, विवाह पंचमी, आप कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी की विवाह पंचमी मनाएंगे। विवाह पंचमी बिना मनाए आप जा रहे हैं, भगवान आप यहाँ रहेंगे, आपके ठाकुर जी का सुंदर उत्सव मनाया, बिना मनाए आप जा रहे हैं, भगवान आप यहाँ रहेंगे, आपके ठाकुर जी का सुंदर श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा है, और आप छोड़ के चले जाएंगे, कितने जीव लाभ से वंचित रह जाएंगे। हमारी तो प्रार्थना है महाराज, फिर हम आगे भले ही आपसे न कुछ कहें, आपकी इच्छा हो जैसा करना, लेकिन विवाह पंचमी तक तो रुक ही जाइए। संत रुक गए, फिर जाने लगे, बोले महाराज गीता जयंती छोड़ के कैसे जाएंगे, तो गीता जयंती आने वाली है, अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी, अगहन हो गया, अब पूष आ गया, आपने संत जाने के लिए तैयार हुए। राजा रोने लग गया और बोला, महाराज पूस में तो ठाकुर जी का खिचड़ी महोत्सव होता है, हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी का खिचड़ी महोत्सव पूस में होता है, और ठाकुर जी छदम धारण करते हैं, श्री जी को रिझाने के लिए ठाकुर जी के कई छदम होते हैं, कभी गोपेश्वर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ कभी मालिनी बनते हैं, कभी भीलनी बनते हैं, कभी मनिहारिन बनते हैं, कभी लीलहारिन बनते हैं, तरह तरह के भेष राधा वल्लभ लाल जी के प्रातःकाल की वेला में उनके दर्शन, कभी जुगल रूप की झांकी होती है, बड़ी भीड़ होती है राधा वल्लभ लाल जी में, प्रातःकाल खिचड़ी का भोग लगता है, खिचड़ी महोत्सव, विभिन्न विभिन्न पदों को गाया जाता है। जब गोपी स्वरूप में उनका श्रृंगार होता है तो समाज में मलुकदास जी का पद गाया जाता है। जोगी जोग जगाने आया ऐसा श्रृंगी नाद बजाया, ये मलुकदास जी का पद जो है वो गाया जाता है ठाकुर जी के। बड़ी प्यारी अनुराग की सेवा है। हरिशरणम। तो महाराज खिचड़ी महोत्सव आपके वृंदावन से ठाकुर जी पधारे हैं, वृंदावन का उत्सव हम लोग यहीं आनंद ले लेंगे। संतों ने कहा ठंड भी बहुत है, बड़े बूढ़े संत हैं, बड़ी बढ़िया सुविधा मिली भैया, कहाँ जाएंगे, चलो। पूस बीत गया, अब माघ आ गया। महाराज संक्रांति स्नान का तो बड़ा फल है, यहाँ नदी बह रही है, आप बिराजिए कुछ दिन। माघ हो गया, फाल्गुन में संत जाने लगे तो राजा चरणों में गिर के बोला, महाराज ठाकुर जी की होली छोड़ के आप जा रहे हैं, होली का तो बड़ा ही आनंद है, सबसे ज्यादा आनंद तो होली में ही मिलता है। अब तो होली भी हो गई, अब आया चैत। संत बोले अब हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे। महाराज जी आप जिनके भक्त हैं उन श्री रघुनाथ जी का रामनवमी महोत्सव आने वाला है, इसे छोड़ के कहाँ जाएंगे, फिर हनुमत जयंती आएगी छोड़ के कहाँ जाएंगे। अब आ गया बैसाख, बोले अब तो हम जाएंगे, अब कोई उत्सव नहीं बचा। अब तो राजा ने संतों के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज अब आगे आपकी इच्छा, देखो अब आपके साथ में श्री किशोरी जी हैं, राम जी का उत्सव तो मना लिया, किशोरी जी का जन्मोत्सव नहीं मनाओगे तो ये तो युगल उपासना है। चलो ठीक है भाई, रामनवमी में बड़ा आनंद आया, जानकी नवमी भी यहीं की मनाओ। अब तो महाराज वैशाख पूरा हो गया, ज्येष्ठ में गंगा दशहरा का बहाना कर दिया, आषाढ़ में कहा महाराज अब तो चातुर्मास लग गया, चार महीने तो संत कहीं जाते ही नहीं, और फिर बड़े बड़े उत्सव होंगे, झूला के होंगे, जन्माष्टमी होगी, राधाष्टमी होगी, अब तो श्रावण भादो कुहार कार्तिक तक सब संत वहीं रहे। कार्तिक के बाद बोले अब एक साल हो गई, अब हम चले जाएंगे, अब आगहन आने वाला है, अब कार्तिक का व्रत भी पूरा हो गया, अब हम चलते हैं। जब राजा ने देखा कि अब तक तो बहाना बना बना करके संतों को रोकते रहे लेकिन अब ये नहीं मानेंगे, इतना ध्यान करते ही राजा मूर्छित होकर के गिर गया। संत नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा तो जीना किस लिए है, जीवित रहने का फल क्या है, मूर्छित होकर गिर गया। रानी राजा की विह्वलता को देखकर यह समझ गई कि अब राजा बचने वाला नहीं है, क्योंकि संतों में इतनी आसक्ति हो गई कि संत गए कि प्राण चले जाएंगे इसके। एक ऐसा निर्णय लिया जो सामान्य स्तर की बात नहीं है, बहुत ऊंचे स्तर की बात है। ये भक्ति का चरित्र नहीं है, ये अति भक्ति का चरित्र है, ये अनुकरणीय चरित्र नहीं है, यह चरित्र अति भक्ति का चरित्र है। रानी ने निर्णय लिया यदि पुत्र का बलिदान करने पर भी सत्संग मिल जाए तो भी हमारा कुछ नहीं गया, हमारा कोई घाटा नहीं, ऐसा निर्णय करके उस रानी ने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। विष जैसे ही बालक को पिला दिया, बालक के नेत्र उलट गए, मुख से झाग आ गया। अब माता ही विष दे दे तो फिर पता कैसे चले कि विष किसने दिया। बस महल में हाहाकार मच गया, करुण क्रंदन होने लग गया। संत महात्मा तो अपना आसन बासन कंधे पे लटका के तैयार थे जाने के लिए। तब तक एकाएक रोना सुना तो संत कहने लगे, भाई देखो जिस सदगृहस्थ के यहाँ हम लोग इतने लंबे समय से कथा कीर्तन कर रहे थे, प्रसन्न थे, अब उस सदगृहस्थ के ऊपर जब विपत्ति आई है तो इस काल में छोड़ के जाना उचित नहीं, चलें देखें तो सही क्या कष्ट हो गया, क्या कारण हो गया। भीतर जाके देखा तो राजा तो मूर्छित पड़ा, पुत्र को देखा तो पुत्र के मुख से विष के झाग निकल रहे थे, पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। संतों ने देखते ही कहा बालक को विष दिया गया है, किसने दिया विष। रोते रोते रानी ने कहा, संत भगवान से कपट क्या है, आप तो भगवान हैं। मैं यह समझ चुकी थी कि अब हमारे पतिदेव जीवित नहीं रहेंगे, आपको तो जाना ही था और पति को भी जीवित रहना नहीं था, और ये नहीं रहते तो मैं कैसे जीवित रहती, मैं पतिव्रता नारी। फिर यह बेचारा पुत्र किसके सहारे रहता। इसलिए पुत्र का बलिदान देकर के भी 10-5 दिन का सत्संग यदि मिल गया तो हमने क्या, हमारा क्या गया। बस इस सत्संग के लोभ में ही हमने पुत्र को विष दे दिया। इतना सुनते ही उन महात्मा ने अपने आसन को पटक दिया और रोने लग गए वे महात्मा, और उन्होंने अपने शालिग्राम जी का चरणामृत लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याध विनाशनम विष्णोः पादोदकम् पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही बालक के मुख में चरणामृत डाला है, विष का प्रभाव तत्क्षण नष्ट हो गया। मरा हुआ बालक जीवित उठ करके बैठ गया, संत के चरणों में गिर गया। अब तो बोलो संत भगवान की जय। उठ करके बालक बैठ गया और अब राजा प्रसन्न हो गया, बालक प्रसन्न था, रानी प्रसन्न थी। और अब संत ने रोते हुए अब तुम धक्का दे करके भी अपने घर से हमको निकालने की कोशिश करोगे तो भी अब तुम्हारे घर से हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे ठाकुर जी अब सतत तुम्हारे घर में ही निवास करेंगे। ऐसी संतों में भक्ति हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, मोक्ष द्वार मपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। संत में आशक्ति, सत्संग में आशक्ति। एक और चरित्र है लेकिन समय अभाव से हम नहीं सुनाएंगे। दूसरा भी है भक्तन हिप्सुत विस्तृत, दो भाइयों के चरित्र हैं, एक और रानी का ही चरित्र।